तो आपको याद करना है और चमकता हुआ सितारा समझना है। चमकता हुआ का मतलब क्या है बोला?
एक होता है
जैसा जैसा सितारा चमकते हैं वैसा चमकता या पॉइंट ऑफ लाइट ऐसा समझना।
एक होता है सितारा जो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है। आसमान में सितारे तो होते हैं ना, कोई सितारे टिमटिमाते रहते हैं वो है चमकते सितारे, और कोई बस टिमटिमाते नहीं है, चमकते नहीं है, चमक नहीं मारते हैं। हाँ, दूसरे जो सितारे हैं सूर्य वगैरह उनसे प्रकाश लेकर के उनकी रोशनी आती रहती है। तो कौन सा सितारा अच्छा होता है? जो टिमटिमाता रहता है, चमकता हुआ सितारा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा की भी कोई स्थूल चमक है या बेहद की सूक्ष्म चमक है। सूक्ष्म चमक है माने हर समय मनन चिंतन मंथन चलता रहे, ज्ञान की रोशनी टपकती रहे। जितना जितना हम अपना मंथन करेंगे उतना उतना ज्ञान हमारा स्थायी हो जाएगा, और दूसरों का सुनाया हुआ दूसरों का मंथन किया हुआ ही हम सुनाते रहेंगे तो फिर हमको चमकता हुआ सितारा नहीं कहा जाएगा।
याद के समय
है,
याद के समय
हाँ, फाउंडेशन हमारा अच्छा होगा तो महल भी खड़ा होगा। अच्छा, पहले आत्मा की याद, फिर बाप की याद, पहले बैटरी तो पक्की करें हैं।
पर हमको कैसे पता लगता है बाबा हम ठीक तरफ याद कर रहे हैं? कैसा पता लगता है हम ठीक तरफ से याद कर रहे हैं?
मनन चिंतन मंथन चलता है तो ठीक तरह से नहीं कर रहे। बहुत सी बूढ़ी माताएं कहती हैं हम मुरली सुनते हैं तब तो समझ में आती है, बाद में हम सब भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं आता। इसका मतलब प्रैक्टिस पड़ गई है चक्की चूल्हे की, बस वो ही याद आता रहता है। बच्चे याद आवेंगे, बच्चियां याद आवेंगी, घर परिवार के लोग याद आवेंगे, संबंधी याद आवेंगे, उन्हीं में बुद्धि रमण करने की आदि पड़ गई। बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं बहुत मंथन चलता है उनका, बूढ़ा है बूढ़ी हो जाती है तो भी मंथन चलता है। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है, जितना मंथन करेंगे उतना जन्म जन्मांतर का ज्ञान हमारा होता जाएगा। द्वापर कलयुग में भी हमारी आत्मा चमक मारती रहेगी ज्ञान की।
बाबा है? ये महाभारत इतिहास में एक गठन आता है एक गठन आता है
गठन घटना
जब भीम सब कौरवों को मार डालता है, बाद में जब ये पांच पांडव धृतराष्ट्र को दर्शन करने के लिए जाते हैं उसी टाइम वो कृष्ण भीम को निकाल करके वो उत्तरा को
उत्तरा पुतला
उत्तरा को आगे रखता है उसी टाइम में वो पुत्र से आकर उतना छटरा चूर करता है
पुतले को तोड़ देता है क्रोध में आकर के है
ऐसी टाइम जरूरी इधर भी आ सकता है क्या
बिल्कुल ऐसा आएगा वो तो अंधा है सोजरा तो नहीं है
ऐसा ही करता है
धृतराष्ट्र जो है वो अंधा है या सोजरा है
अंधा है
बता तो अंधा है जो भी काम करेगा अनुमान से करेगा तो अनुमान से तो नुकसान ही होगा और ये 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 रास्ता बताने वाला भी भगवान है नहीं तो भीम की तो मोटी बुद्धि हो तो जाके सीधा ही खड़ा हो जाता पुतला जड़ होता है या चैतन्य होता है जड़ होता है माना जो धृतराष्ट्र है वो जड़त्व को खत्म कर देता है
सात नारायण भी 16,000 का लिस्ट में आते हैं क्या
अगर सात नारायणों को 16,000 की लिस्ट में ले आवेंगे तो वो तो कम कलाओं वाले हैं
लेकिन उनको भी गद्दी मिलते हैं ना
गद्दी मिलती है गद्दी मिलती है लेकिन जो गद्दी मिलती है उस गद्दी के हिसाब से वो सप्त ऋषियों की गद्दी मिलती है या कि राजाओं की गद्दी मिलती है तो सप्त ऋषि हैं पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं गुरु लोग हैं कम कलाओं वाले हैं एक दूसरे से कम कलाओं वाले हैं तो कम कलाओं वाले ब्राह्मणों को पैदा करते हैं जो नौ ऋषि हुए हैं उन नौ ऋषियों से नौ प्रकार के गोत्र पैदा हुए ब्राह्मणों के तो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले गोत्र हैं ना तो जो बाप आकर के राजाई देते हैं या राजघराने में जो वर्षा देते हैं वो संपूर्ण पुरुषार्थ करने वाले बच्चे होते हैं या अधूरा पुरुषार्थ करते हैं संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं और राजाई भी किस आधार पर मिलती है कौन सा पुरुषार्थ खास है यहाँ तो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट है लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है जो ऊंच पद बनाता है याद में भी क्या विशेष बात है जो हमारा पद ऊंचा बन जाता है याद में भी सेवा भरी हुई है याद से वाइब्रेशन सुधरता है और वाइब्रेशन से सेवा हो जाती है तो ऊंच पद पाने का मूल आधार क्या हुआ सेवा जो जितनी सेवा करेगा वो उतना ऊंच पद प्राप्त करेगा इसलिए बोला है कि जब संपूर्ण सतयुग होगा तो आबादी कितनी होगी नहीं
एक
लाख नहीं 9,16,108 आबादी होगी
बट लेकिन वो तो 150 वर्ष अंत में आ जाता है
हाँ जी तो संपूर्ण सतयुग हुआ ना तो जो भी आत्माएं हैं राजपद पाने वाली राजघराने में आने वाली चाहे सतयुग के आदि में राजघराने में आती है राजा बनती है महाराजा बनती है वो और चाहे उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो त्रेता के अंत में जाकर के राजा रानी बनती है या राजघराने में जन्म लेती है अंतिम जन्म में भी जन्म लेने वाले वहां मौजूद तो हैं, कहां पहले जन्म में, वहां दास दासी भले बने। जैसे क्रिश्चियन धर्म का जो बीज है, राम के राज्य में तो दिखाया गया है कि वो पांव के नीचे बैठा हुआ है, या छत पर चला रहा है, या पंखा घुमा रहा है, लेकिन आखिरी जन्म में उसको मानी मोचरा मिलेगा या नहीं मिलेगा कि दास दासी बना रहेगा? नहीं, आखिरी जन्म में प्राप्ति होती है। तो सत्युग के आदि के जन्म से लेकर के त्रेता के अंतिम जन्म तक वो 16,000 जो प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो सब कुछ न कुछ मान मर्तबा प्राप्त करते हैं।
बाबा आकस्तले थार क्या नीचे बिद्ध नोट बर्बाद
जो स्टार है वो नीचे गिरता है, उसे देखना अशुभ माना जाता है।
वो है जड़ स्टार और यहाँ है चैतन्य स्टार। यहाँ ये जो चैतन्य स्टार है वो ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको दिखाया जाता है जैसे शंकर जी कहाँ बैठे दिखाए जाते हैं, शंकर जी और उनके साथ वाले जो रुद्रगण हैं
कैलाश,
वो कहाँ दिखाए जाते हैं?
कैलाश
पर। तो क्या वहाँ पहाड़ पर बैठे बैठ करके पुरुषार्थ कर रहे हैं? ऊंची स्टेज में पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर ऊंची स्टेज में कोई पुरुषार्थ करते करते पांच मार से नीचे गिर गया, विकार में गिर गया, तो उसे देखना चाहिए?
नहीं
है, उसका परचिंतन करना चाहिए?
नहीं।
उसे फायदा होगा?
नहीं,
नुकसान होगा।
नुकसान हो जाएगा। तो जड़ सितारे की बात नहीं है, कौन से सितारों की बात है? चैतन्य सितारों, जड़ सितारों को देखने से क्या होगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? गिरा जो गिरे।
बाबा मुरली 18 साल चला
है,
मुरली रामा के मुख से 18 साल चला,
18 साल चला, नहीं 47 से चली, कराची से मुरली निकलती चली आई है,
पर वो
छपी नहीं,
छपी नहीं, पर वो सभी मुरली जो छपी प्रजापिता या राम वाले आत्मा को पढ़ने को मिला
है। राम वाली आत्मा बाद में आती है या 47 में ही आ जाती है?
बाद
में आती है, तो बाद में ही पढ़ने को मिलेगा सब, या सब पहले ही मिल जाएगा? धीरे 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 जैसे जैसे वो आउट होती जाएंगी पढ़ने को मिलती जाएंगी,
सभी मिला
क्यों नहीं मिलेगी? नहीं मिलेंगे तो सारे राज खुलेंगे कैसे? भक्ति मार्ग वाले भी मानते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है, लेकिन वेदों की ऋचाओं के अर्थ ही समझ में नहीं आते किसी को। एक ऋचा का कनेक्शन दूसरी ऋचा से है, प्रसंग ही नहीं मिलता। बहुत से तो कहते हैं कि आप वेद में पागलपन भरा हुआ, कोई तालसोर नहीं। यहाँ भी मुरली सुनने वाले कोई कोई ऐसे कह देते हैं कि हाँ मुरली, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी वो ही बात बार 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 सारा रिपीट ही करते रहते। क्या भगवान की मुरली है? भगवान की वाणी है? लेकिन उस वाणी में कितने रहस्य भरे हुए हैं? एडवांस नॉलेज जो निकली है वो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी के द्वारा निकली है, उसका आधार वाणी है या कोई और है? वाणी में से सब कुछ निकल रहा है, समझ समझ का फेर है। उसी वाणी में लोग ब्रह्मा कुमार कुमारी यहां तथाकथित बोल देते हैं कि तो गोल गोल भाषा है बाबा की, दुनिया गोल है, बाबा का ज्ञान भी गोल है। कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण समझदार, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्ध। अरे ये कोई बात हुई? क्यों कह देते हैं ऐसा? क्या नहीं समझते? ये सवाल समझने की क्या बात है इसमें? लक्ष्मी नारायण बुद्ध, लक्ष्मी नारायण समझदार, उसका प्रसंग जो है वो किस प्रसंग में कहां बोला गया है और किस प्रसंग में कहां बोला गया है, उसका तालमेल नहीं बैठा पाए तो उल्टा अर्थ समझते हैं। भगवान भी बुद्ध अब पागलों की तरह बोलता रहता है।
यज्ञ के आदि में ढेर सारे कन्या माता है बाबा से आकर्षित होकर ओम मंडली में शामिल हो गए हैं। उनमें से कोई कोई रात 1-2 बजे में बालकनी से भी कूद पड़े और बाबा के पास चिपके चिपके आ गए। ये बातें कौन सी बाबा के लिए लागू होती है, सेवक राम बाप या ब्रह्मा बाबा?
मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, वास्तव में है ये सारी प्रजापिता की कहानी। नाम डाल दिया कृष्ण का, तो समझ नहीं आया किसकी कहानी है। प्रजापिता कौन है और कृष्ण की आत्मा कौन है उस समय पार्टी बजाने वाली? अरे ब्रह्मा कुमारियों ने किसका नाम डाल दिया? ब्रह्मा का नाम डाल दिया। दादा लेखराज का नाम बाला कर दिया, और जिसके द्वारा सारा कार्य संपन्न हुआ उसका नाम ही गुम कर दिया। कृष्ण का नाम डाल देते हैं और बाप का नाम गुम कर देते हैं। शूटिंग कौन करता है? तथा कथित ब्रह्मा कुमार जो मुरली की महावाक्यों को महत्व नहीं देते, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए महावाक्यों को महत्व नहीं देते। किसको महत्व देते हैं? ब्रह्मा के पुतले को महत्व देते हैं, ब्रह्मा की गोद को महत्व देते हैं। ब्रह्मा के शरीर से चिपकना पसंद किया, ऐसे ही उनके फॉलोअर्स हैं आज हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से चिपकते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात मानते हैं। न ब्रह्मा को महत्व देते हैं, न सरस्वती को महत्व देते हैं, और शिव तो बहुत ही ऊंची बात हो गई।
शव को भी गुम कर दिया ऐसे बोलना है ना, तो वो साकार को सदा भी करके बेहद
सब किसे कहा जाता है? साकार को कहा जाता है, निराकार को कहा
जाता
है? ऐसी तो मुरली में बोला है, इन बच्चों के पास उनके फोटो भी रखे हुए हैं। माने दीदी दादियां जानती हैं कि वो मम्मा बाबा को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाली आत्मा है कौन थी, उनका चेहरा नोरा उनको सब याद है। लेकिन अभी उन्होंने वो नाम भी छुपा दिया, वो फोटो भी छुपा दिया। कोई प्रजापिता का नाम लेती है कोई दीदी दादी? नहीं लेती। हम जब ज्ञान में आए थे बेसिक में, उस समय हमने सुना था, 3-4 साल तक लगातार सुनते रहे, प्रजापिता की बात सुनते सुनाते रहे, प्यू 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 की वाणी चलती थी। बाद में जब से एडवांस नॉलेज निकली बस
सब को गुम कर दी।
माना उन दीदी दादियों के जीवन से, प्रैक्टिकल जीवन से संबंधित कोई प्रजापिता की प्रैक्टिकल जीवन की बातें हैं जिनको मान मर्तव्य के कारण वो दुनिया के सामने बोलना भी नहीं चाहती। अगर वो बातें उभर करके सामने आ जाएंगी तो हमारा मान मर्तव्य क्या रह जाएगा?
सब कौन पति हो जाएगा।
परिवार का एक व्यक्ति ज्ञान में आएगा तो उनका सारा परिवार ज्ञान में आ जाएगा।
एडवांस
इसका मतलब वो परिवार वाले अलग शहर में दूसरा रहे तो दूसरा घर में वो भी
घर को थोड़ा ही परिवार कहा जाता है। ईंटों को थोड़ी परिवार कहा जाता है। शहर को परिवार थोड़ी कहा जाता है। परिवार तो खून से बनता है।
पर वो तो सुनते ही नहीं ना बाबा।
आती नहीं। ये कहां कहा कि अभी आ जाएंगे? ये कहा क्या?
नहीं।
ये तो नहीं कहा अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे
उसी घर में नहीं
चलेंगे। चलेंगे का मतलब जब प्रत्यक्षता होगी भगवान बाप की सारी दुनिया में, रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट में, अखबारों में, चारों तरफ दुनिया में प्रत्यक्षता होगी तो वो नहीं मानेंगे।
मानना पड़ता है।
मानना पड़ेगा। वो पहले मानेंगे। वो तथाकथित तो ब्रह्मा कुमार कुमारी भले न माने लेकिन वो मानेंगे
क्योंकि
परिवार के खून के हैं। उनको उनका खून खींचेगा। ये देखो हमारे परिवार में भी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, हमने नहीं पहचाना।
बाबा अगर वो विदेश में रहेगा तो
वहाँ आजकल विदेश कोई दूर है क्या?
वहाँ का सभ्यता उसको बहुत पसंद है।
अरे यहाँ बैठे बैठे विदेश वालों से घर वालों की तरह बात करते रहो, रात भर बातें करो, उनका चेहरा देखो। वो हमारा चेहरा देखे, दूर है क्या?
दूर नहीं, लेकिन उसको वो सभ्यता पसंद है।
सभ्यता पसंद है
सभ्यता।
जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होगा तब उनको कौन सी सभ्यता पसंद होगी? वहां भगवान नहीं आया जहां हम दूर बैठे हुए, उनको तो पश्चाताप होगा कि हम अपने देश को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, हैं? अपने उस कर्म को भूल गए जो कर्म हमें भगवान की पहचान देता है, भगवान के नजदीक ले जाता है। हम विदेशियों के आकर के दास बन गए, उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने भारतवासी भाई बंधुओं की सेवा करना हमने अच्छा नहीं समझा, कैसा हमारा पार्ट हो गया? उन्हें पश्चाताप नहीं होगा? फिर हम ऐसे देश में पड़े हुए हैं जो 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 समुद्र के गर्त में समा जाने वाले, ना पहले थे ना अब रहेंगे, भागना चाहेंगे वहां से।
ये कथा है सन्यासी जब तक आएंगे नहीं हमारा विजय नहीं होता, और उनका बड़ा मोटा जड़ है, और क्या वो हर जन्म में सन्यासी ही बनते रहेंगे? जन्म में पवित्रता इकट्ठा करने के लिए वो हमेशा सन्यासी ही बनते रहेंगे?
इस भारत को थमाया किसने?
सन्यासी
ने थमाया। कौन सी पावर? प्योरिटी की पावर। तो जिनमें प्योरिटी के संस्कार हैं, वो प्योरिटी के संस्कार समय पर काम आते। झूठी पवित्रता को भी उन्होंने निभा लिया तो जब सच्ची पवित्रता का उनको पता चलेगा तो पावर नहीं भरेंगे है? हाँ पावर भरेंगे,
पावर तो भरेंगे बाबा, पर हर जन्म में सानिया से
हर जन्म में सन्यासी बनते हैं द्वापर युग से, लेकिन देवता तो बनते हैं।
गृहस्थी नहीं बनते हुए।
देवता नहीं, देवता गृहस्थी नहीं होते।
नहीं
तो देवता देवता जन्म में तो पावर बन जाते हैं। जब तक वो नहीं निकलते हैं तब तक हम अधूरे हैं, वो निकलते हैं तो पावर बढ़ जाते हैं। तो महत्व तो उनका भी है ना, उन्होंने कम से कम प्योरिटी को महत्व तो दिया, हमने महत्व नहीं दिया।
बाबा सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी क्या
है? ब्रह्मा देवता है नमा, विष्णु देवता है नमा, शंकर देवता है नमा, इनमें सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है और दोनों का मेल करने वाला कौन है? संपूर्ण जो विजय होती है वो कौन से देवता की होती है? वो इसे सुनना नाड़ी है।
बाबा ये एस्ट्रोलॉजी में है, बोलता है राहु का बुद्धि 18 साल मोटा है, 18 साल, बट लेकिन जब मैं देख लिया केतु का और ही बड़ा है 20 साल।
अच्छा है,
कैसे बोल सकता है राहु ये है सबसे?
कोई थोड़े टाइम में ज्यादा सत्यानाश नहीं कर सकता है, है? कर सकता है तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? राहु ज्यादा पावरफुल हुआ या केतु ज्यादा पावरफुल हुआ? राहु को दिखाते हैं सर ही सर है, क्या बुद्धि ही बुद्धि है, धड़ नहीं है। विजयमाला को धड़ ही धड़ है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और राहु को बुद्धि ही बुद्धि है, धड़ नहीं, प्रैक्टिकल जीवन नहीं है। नास्तिक धर्म कैसा है? बुद्धि ही बुद्धि सारी काम कर रही है। क्या बुद्धि का कमाल है, ऐसे एटम बम बना के रखे हैं जो मिनटों में दुनिया को खलास करेंगे, सारी दुनिया। अभी की देखो चारों तरफ आवाज निकलती है, ज्योतिषी बोलते हैं, सद्धर्म संप्रदाय वाले बोलते हैं विनाश होना है, विनाश होना है, विनाश नहीं होता। और जब वैज्ञानिकों की बुद्धि में बैठ जाएगा करो तो देर लगेगी नहीं,
सिर्फ 7 दिन
फिर लेकिन बुद्धिमानों को बाप पसंद नहीं करता, जो अपनी बुद्धि का अहंकार दिखाते हैं। ये विद्वान पंडित आचार्य सब अपनी बुद्धि का वैभव दिखाते रहे, इसलिए इसी दुनिया में नाक रगड़ते रहे और दुनिया वालों की भी नाक रगड़वाई, दुनिया का उत्थान नहीं कर पाए ना अपना उत्थान कर पाए।
अहंकार उतना
अहंकार जो है नीचे गिराता है। भगवान बाप भी जो सदैव बिंदु है वो भी दुनिया का कल्याण नहीं कर पाता, बिंदु बन करके कब कल्याण करता है? जब कोई साकार तन में प्रवेश करता है तब दुनिया का कल्याण होता है।
गंगा शूटिंग पीरियड में ही सारे उत्तर भारत का कन्वर्शन करती है। शूटिंग पीरियड में ही बहुत लोगों को उत्तर भारत में कन्वर्शन करती है, ज्ञान में खींच दिए है। पर ये ब्रॉड ड्रामा में अभी ज्यादा होना चाहिए ना, पर ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो कन्वर्शन किया ज्ञान में।
द्वापर युग से लेके कलयुग तक मनुष्य गुरुओं का राज्य होता है या राम का राज्य होता है? राम भी मनुष्य गुरुओं के प्रभाव में रहता है, उनसे हारता रहता है कि जीत पाता है? भारत की जीत होती रहती है या भारत की हार होती रहती है? हार होती रहती है। तो गंगा के द्वारा भी जो शूटिंग हो रही है उसके किनारे जो चौपड़ी मार के बैठते हैं वो गुरु लोग बैठे हैं या भगवान बैठता है? गुरु लोग बैठते हैं। संघ ही उसका गुरुओं का है, सन्यासियों का है, और उन सन्यासियों के बीच में गंगा तो बहुत बड़ी सन्यासी है। वो गुरु लोग भी पहले गृहस्थियों के यहां जन्म लेते हैं। कहां जन्म लेते हैं? गृहस्थियों से ही तो जन्म लेते हैं, गृहस्थियों से पालना लेते हैं कि नहीं? बाद में सन्यासी बन जाते। ऐसे ही गंगा भी भगवान बाप से पहले पहले पालना लेती है, एडवांस में जन्म लेती है। और कोई कन्या ने पहले इतना ज्ञान नहीं उठाया गहराई से जितना गंगा उठाती है, लेकिन फिर सन्यासी बन जाती है। क्यों?
संस्कार।
जितने भी धर्म संप्रदाय वाले हैं सबसे ज्यादा अहंकार किन में होता है?
सन्यासी
में बहुत अहंकार होता है
ना।
मान मर्तबा चाहते हैं। शास्त्रों में दिखाया गंगा आई विष्णु के चरणों से आई या ब्रह्मा के कमंडल से आई, ऊपर से नीचे आई, लेकिन शंकर जी ने उसको पैरों में क्यों नहीं संभाल लिया? पार्वती की तरह गोद में क्यों नहीं स्थान दे दिया? सिर में क्यों, सर के ऊपर क्यों बिठा लिया है? उसे मान बर्तावा चाहिए ना।
काम
करती
है,
काम करती
है जी। पहले सर पर बैठा फिर हम नीचे उतरेंगे।
ब्राह्मण में ऐसा कौन व्यक्ति थे
भगवान?
ब्राह्मण में ऐसा
अब व्यक्तवाणी में चारा तो दे दिया। गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? अरे कानपुर का नाम क्यों ले दिया? ऐसे तो गंगा फर्रुखाबाद से भी गुजरती है, फतेहगढ़ से भी गुजरती है, पटना से भी गुजरती है, वाराणसी से भी गुजरती है। इन शहरों का नाम क्यों नहीं लिया? कानपुर का नाम क्यों ले लिया?
कानपुर।
हाँ, ज्ञान सुनते सुनते कानपुर गए होंगे, कान भर गए होंगे। और गंगा भी अपने आखिरी जीवन में सबसे नीचे गिरती है या 63 जन्मों में जो पहले के जन्म होते हैं उनमें ज्यादा नीचे गिरती है? आखिरी जन्म में ही तो नीचे गिरती है। तो गंगा का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा कारखानों का प्रदूषण जाकर के गिरता है गंगा में, नाली गिरते हैं
कानपुर में,
यमुना के लिए तो दिल्ली है।
बट लेकिन बाबा वो ताजमहल से देखने से ही एकदम काला हो गया।
वो तो यमुना की बात हो गई, यहाँ गंगा की बात हो रही है। गंगा में ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण कौन से शहर का गिरता है?
कानपुर में।
कानपुर में तो स्थूल में भी गंगा जो है कलयुग के अंत में कानपुर में सबसे जास्ती गंदी नीचे गिरती है, और चैतन्य में भी आखिरी जन्म में जरूर कानपुर में जन्म लेना चाहिए। हद की बेसिक वाली ही गंगे दादी नहीं, एडवांस की गंगे दादी भी, दोनों दादियां कानपुर से कनेक्टेड है। क्या देना है? क्या देने से दूसरे सुखी होंगे? है भिखारी आया सामने, भिखारी को गाली देंगे तो खुश हो जाएगा? है नहीं नहीं, कोई कोई भिखारी होते खाना नहीं चाहते, तो पैसे दो जब कुछ नहीं देंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो रुकेश से उनको कहना पड़े ना, भाई पैसे थे उसके तो हमने टिकट खरीद लिए, हमारे पास खाना रखा है, लेना चाहो ले लो, तुम तो नाराज तो नहीं होगा।
कृष्ण ही कंस और राम ही रावण बनता है, ये दोनों पाठ एक ही शरीर के द्वारा बजाया जाता है, एक ही शरीर के द्वारा बजाया जाता है, दोनों पाठों में अंतर क्या है?
अंतर ये है कि राम वाली आत्मा जो प्रवेश करके पाठ बजाएगी और कृष्ण वाली आत्मा जिनमें प्रवेश करेगी वो एक ही होंगे, एक ही कैटेगरी के होंगे? राम वाली आत्मा जिनमें प्रवेश करके पाठ बजाती है वो ग्रुप अलग है, और कृष्ण वाली आत्मा जिनमें प्रवेश करके पाठ बजाती है वो ग्रुप अलग है। त्रेसठ जन्मों का भी ऐसा ही हिसाब है। राम वाली आत्मा को जो स्पेशल फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है, और कृष्ण वाली आत्मा को जो स्पेशली फॉलो करते हैं वो ग्रुप
अलग।
इब्राहिम के साकार चोले को जो फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है, जीसस क्राइस्ट को जो फॉलो करते हैं वो ग्रुप अलग है,
कहते हैं श्री राधे कहते हैं
है?
श्री लक्ष्मी श्री राधे कहते हैं
हाँ?
पर दूसरे कन्या माता को वो श्री नहीं डालने देते, क्यों नहीं?
श्री राम नहीं कहते हैं?
वो पुरुष हो गए,
सभी देवताओं के आगे श्री तो लगाते ही है, देवियों के आगे भी श्री लगाते हैं। देवी देवता बनते ही तब है जब श्री हो, श्री माने श्रेष्ठ हो, नहीं तो देवी देवता कहे कैसे जाएंगे? नाम श्री पड़ता ही तब है जब उस श्रेष्ठ काम किया है।
पर जब वो श्री कब छोड़ दिया गया बाबा
है,
वो श्री द्वापर से,
द्वापर से कर्म भ्रष्ट हो गए जैसे काम, तो नाम भी श्री उड़ गया।
पर श्रीमती लगते हैं, श्रीमती लिखते हैं उसका भी
मती माने बुद्धि,
वो भी श्री हो गया ना
है,
उसका भी मतलब श्री हो गया ना।
भक्ति मार्ग में सब झूठा चलता है या सच्चा चलता है?
झूठा।
हाँ तो राष्ट्रपति को भी श्री लगा देते हैं, मुसलमान राष्ट्रपति बना उसको भी श्री लगा दिया।
पर श्री को श्रीमती क्यों बनाया?
भक्ति मार्ग वालों ने बनाया ना, बाबा थोड़ी कहते हैं कि वो श्री है। बाबा ने बताया क्या कि उनके आगे श्री लगाओ? जयनगर की स्टूडेंट संख्या कम होती जा रही है, क्या बात है? आज कम है। अच्छा, गुरुवार और मंगलवार को ज्यादा होते हैं। साबे में आने का मतलब क्या है?
कब्जे
में आ गए माना विकारी बन गए। वो भले कितना भी अपने विकारों को छुपाएं सफेद कपड़े पहन के, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा जब संसार के सामने उनकी इम्प्योरिटी खुल जाएगी, सबको पता लग जाएगा, अरे इन्होंने तो बड़ा ही बेविचार किया। तो कंस के कुसाबे में आ गए क्या? और एक कन्या भी थी, वो कन्या कंस ने हाथ में पकड़ तो ली थी लेकिन उसके कुसाबे में नहीं आई। जैसे ही उसने पटकने की कोशिश की और वो उसके बुद्धरूपी हाथों से छूट गई, मरा ऊंची स्टेज में चली गई। वो कौन है? जो विजयमाला की हेड है, ऐसे नहीं कि उसकी परीक्षा नहीं होती है, उसकी भी प्योरिटी की परीक्षा होती है, लेकिन वो किसी के कब्जे में आती नहीं, उड़ जाती है ऊंची स्टेज में। कंस उसको अपवित्र नहीं बना पाता।
बाबा, बहुत से गांव में जो सेवा नहीं हुई है और लोग बुलाते हैं और वहाँ चार चार पांच पांच सौ लोग उस ज्ञान को सुनते हैं, तो बाबा ऐसी जगह पर बाबा कहते हैं ये तो चीटी मार की सेवा है, तुमको तो व्यंग मार की करनी चाहिए। और अपने घर में आग लगी है, तुम बाहर जाके जल देते हो, तो क्या बाबा करनी चाहिए?
जो तुमको बुला रहे है, निमंत्रण दे के बुला रहे है, और एक वर्ग वो है जो तुम्हें देखते ही लाल लाल आंखों से देखते हैं, भगाए देते हैं, बजाय बुलाने के क्या करते हैं, तुमको भगाए देते हैं। तो भगाए देने वाले तुम्हारे कुल के हैं या बुलाने वाले तुम्हारे कुल के हैं?
बुलाने वाले
तुम्हारे कुल के हैं, तो जाना चाहिए ना। अरे उनमें पूजन में तो कोई संस्कार है ना, तभी तो बुलाते हैं, नहीं तो दुनिया वाले ठुकरा रहे हैं या हमको बुलाए रहे हैं। दुनिया वाले तो ठुकरा रहे हैं।
तो बाबा जी, चार पांच सौ लोग जब आ जाते हैं तो ये तो मेला हो जाता है ना, तो मेले में तो
उनको संदेश तो देना है ना, ऊपर ऊपर की बातों का संदेश देना है।
बाबा, एक दिन अभी एट आश्रम गए थे, वहाँ एक बहन थी, वहाँ पर जब कोर्स कराने बैठे तो मूर्ति का, तो थोड़ी देर जब कोर्स हुआ तो एक बिच्छू आया, बिच्छू आके किताब में बैठ गया, फिर उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया गया।
अरे किताब ऐसे हाथ में पकड़े थे, वो चढ़ता ही चला आया,
पीछे रखी थी किताब।
अच्छा,
बिच्छू आके किताब पर बैठ गया।
बैठ गया,
फिर उसको चिमीटा से पकड़ के बाहर फेंका।
हाँ।
दो मिनट बाद फिर दूसरा बिच्छू आके बैठ गया।
अरे
दूसरे बिच्छू को उठा करके फेंका तो तीसरा इतना मोटा बिच्छू आ गया।
अरे
उधर बैठ गया, बहन कहती अब संता का पार्ट आ गया। गोपाल जोन से जुड़ी हुई थी, वो 8 में है इस समय।
अच्छा, वो बिच्छू कहीं नहीं,
ये
सिर्फ शंकर
क्या हुआ
के ऊपर ही बैठता था।
है?
वो बिच्छू कहीं नहीं बैठते थे, सिर्फ शंकर के ऊपर ही बैठते थे।
शंकर के ऊपर माने पास में शंकर की मूर्ति भी थी। अच्छा, किताब में और कहीं नहीं बैठता था, वो बिच्छू टिंडन आकर के उनके ऊपर ही आगे बैठता।
बाबा इसका क्या हुआ कि एक हो गया दो हो गया, बाद में तो इतना बड़ा बिच्छू आया किसके दे दे तक चला जाता।
भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत से अजूबे गरूबे होते रहते हैं। ये जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये मनुष्य के संसर्ग संपर्क में आते हैं कि नहीं आते हैं? है? और जब इनके संसर्ग संपर्क में आते हैं तो इनको भी सुख और दुख मनुष्य से मिलता है या नहीं मिलता है? ये मनुष्य आत्मा तो नहीं है, ये तो अपने किस्म की जाति है, लेकिन है तो आत्मा ना, बीज तो है। तो उन बीजों का पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब है किसके साथ? उसके साथ। जैसे जैनी लोग हैं, उनकी मान्यता ये है कि दांत भी नहीं साफ करने। उनके जो महात्मा लोग होते हैं ना, वो दांत भी साफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि कीड़े मर जाएंगे। माने कीड़े मकोड़ों के ऊपर भी दया करनी है, उनमें भी आत्मा है। तो शंकर जैसी ऐसी आत्मिक स्टेज धारण करे कि बिच्छू टिंडन जैसी सर्प जैसी आत्माएं उसके संसर्ग संपर्क में तो आए, लेकिन मित्रता का भाव अपना करके आए, शत्रुता का भाव करके उनको काटे नहीं, या कि चित्र के ऊपर चढ़ करके उसने डंक मार दिया।
डंक कुछ नहीं मारा,
तो डंक आगे बैठ गए।
बाबा कभी छुआ
तो
नहीं,
पूर्व जन्म का उसका संस्कार है,
उसको छुआ नहीं था, हिम्मत पता नहीं कहां से आ गई।
बाबा
हाँ।
जैसे अकेली माता है और किसी भाई को सुनना है या तो माता सुना सकती है?
माता अगर मैच्योर्ड है, 45-50 साल की हो गई है, 5-7 बच्चों की अम्मा है, तो उसमें इतना हिम्मत नहीं आई होगी कि हम किसी भाई को अकेले में सुना सके?
नहीं, इसमें तो 2-3 माता भी बैठी है ट्रेन में, बस
तो फिर तो कोई बात ही नहीं,
तो सुना सकते हैं।
जब 2-3 माताएं बैठी है फिर तो कोई बात ही नहीं, पूछने की भी बात नहीं। कन्याओं को भी ये खास पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि ढाल को साथ में लेकर के ज्ञान तलवार चलाएं। क्या? क्यों? क्योंकि बिना ढाल के अगर तलवार अकेली काम करेगी तो तलवार के ऊपर वार हो सकता है। क्या वार होता है कि नहीं दुर्योधन दुशासन का? तो इसलिए मना किया हुआ है। उसी तरीके से अगर कम उम्र की माताएं हैं तो उनको भी कोई न कोई मेच्योर्ड माता साथ में रखनी चाहिए।
एक दो माता हो तो अपने कराते रहो।
बिल्कुल सही बात है। और
बाबा महाभारत में जो अज्ञातवास
है,
महाभारत में अज्ञातवास पांडव का दिखाया गया है।
हाँ,
ये कहाँ की याद?
ये कहाँ की याद था?
की याद था।
अच्छा,
यही संगम युग में कब की याद था?
अच्छा, महाभारत कब की यादगार है? संगम युग में भी कब की? कौन से युग की यादगार है? द्वापर युग की। द्वापर युग की शूटिंग एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में कब तक हुई? 98-99 तक द्वापर युग की शूटिंग हुई ना। अब द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता हुई या नहीं हुई? हुई ना। तो जब कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता हुई, कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ माने भगवान प्रत्यक्ष हुआ, तो उसके बच्चे भी प्रत्यक्ष हुए होंगे। पंडा बाप प्रत्यक्ष हुआ तो पांडव भी प्रत्यक्ष हुए होंगे, और जब पांडव प्रत्यक्ष होते हैं तो उनको वनवास भी मिलता है। क्या जैसे राम को वनवास दिखाया, अकेले राम को कि लक्ष्मण सीता दोनों को, उनको तो ऐसे ही, और टाइम भी लगभग दोनों में एक जैसा है, रामायण में 14 साल का और महाभारत में 13 साल का। तो ये जो वनवास है, वन कहो जंगल कहो, किस बात की यादगार है? है ये जंगल किस बात की यादगार है? कांटों का जंगल है। एक आदमी अपने घर में रह करके आराम से सेवा करता है, अपनी दुकान पर बैठ करके सेवा करता है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। खुंचे वाला होता है ना, वो हाथ में रख करके वजन और गलियों गलियों में घूमता फिरता है, और एक दुकानदार अपनी गद्दी पर आराम से बैठा सेवा कर रहा है, तो ज्यादा आराम किसको मिल रहा है और परेशानी वजन किसको ढोना पड़ रहा है? खोजे वाले। तो ऐसे ही कांटों के जंगल में भटक भटक के ज्ञान देना, और ब्रह्मा बाबा की तरह चैन की बंसी बजाए के माउंट आबू में बैठे बैठे ज्ञान देना, ज्यादा आराम किसमें? बैठे बैठे। तो ऐसे ही जो पांडवों का हिसाब है अव्यक्तवाणी में जो बोला है 2000 में कि बाप दादा दुनिया वालों की नजरों के सामने से गुप्त हो गए, माने जो कौरव हैं विरोध करने वाले और जो यादव हैं विरोध करने वाले उनकी नजरों से गुप्त हो गए, और तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। तो इससे जाहिर होता है कि 99 के बाद वो 12 साल का 13 साल का 14 साल का वनवास प्रत्यक्ष हुआ, कांटों के जंगल में उनको भटकना पड़ता है, तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। कोई कोई अभी भी प्रश्न करते हैं, बेसिक वालों को तो महलवाणियां अटारियां आई हैं ढेर सारी, एडवांस वालों को भी तो बड़े बड़े मिनी मधुबन मिले हुए हैं।
हम लोग एडवांस के कुछ बच्चे ही ऐसे कहते हैं,
मिले हैं कि नहीं? बड़े बड़े महल मिले हुए। तो पांडवों को जो गायन है कि तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, तो ये बात कैसे लागू होती है? और लागू हो रही है कि नहीं हो रही? कैसे हो रही? पहले तो हर काम हर बात जो है बाप से शुरू होगी ना, बाप बीज में पांडव भी समाये हुए हैं, तो बाप के लिए ये बात क्लियर हो जाती है, और बाप के जो सहयोगी बच्चे हैं उनको भी गुप्त ही रहना पड़े। जो बाप के जीवन में जो बात समाई हुई होगी संगम युग में, वो बात बच्चों के जीवन में भी आएगी या नहीं आएगी? परीक्षा आएगी, आज नहीं तो कल। तो बाप इस समय गुप्त पार्ट बजाए रहा है और कांटों के जंगल में भटक रहा है, तीन पैर पृथ्वी का ठिकाना नहीं मिल रहा है, एक जगह बैठ के सेवा करेगा तो हमला हो जाएगा। पांडवों को भी तो यही डर था ना, उस बात को देवासुर संग्राम में दूसरे तरीके से दिखाई दिया। क्या दिखाया? कि भस्मासुर जो षष्ठी का बीज है शंकर, उसके पीछे पड़ गए, तो सारी दुनिया में वो भागते भागते फिरे कि नहीं? सारी दुनिया में भागते भागते फिरे और उनको कहीं ठिकाना नहीं मिला। शास्त्रों में एक ही तरह की बात को 20 तरह से दिखाया है।
देवताएं असुरों से बहुत डरते
हैं।
देवताएं असुरों से बहुत डरते
डरते क्यों हैं? कहाँ के संस्कार हैं जो डरते हैं? नहीं, द्वापर कलयुग में जो देव आत्माएं हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में चली जाती हैं या नहीं चली जाती? कोई इस्लाम धर्म में, कोई क्रिश्चियन धर्म में, कोई बौद्ध धर्म में, कोई सिख धर्म में, कोई सन्यासी बन गए, सारे ही कन्वर्ट हो गए, तो संख्या कितनी रह जाती है?
पांच
रह जाती है मुट्ठी भर, और वो ढेर के ढेर। तो जो मुट्ठी भर हैं वो बाहुबल का प्रयोग करेंगे या जो ढेर के ढेर हैं वो बाहुबल का प्रयोग करेंगे? जो ढेर के ढेर हैं वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं, और शिवाजी जैसों को जंगल जंगल में भटक भटक करके अपने प्राण बचाने पड़ते हैं, मुकाबला करना पड़ता है। तो यहां पर शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, बातें सारी वही है जो शास्त्रों में लिखी हुई है।
हाँ। कोई कोई आत्मा को शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट मिलता है, तो किस अपराध की सजा है?
माने पूर्व जन्म में उन्होंने कष्ट नहीं दिया है? है दूसरी आत्माओं को मृत्यु के समय उन्होंने कष्ट नहीं दिया होगा? अरे किसी की मौत हो रही है, किसी की मौत हो रही है, मौत के समय उसको सुख देने की बात करनी चाहिए या दुख देने की बात करनी चाहिए? है और किसी ने दुख दे दिया अंत मत, तो उसका हिसाब किताब नहीं बनेगा। ब्रह्मा बाबा को अंतिम समय में कोई ने एक दो दिन पहले दुख दे दिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाए लिया, सारी ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी और संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया। दो दिन के बाद ब्रह्मा बाबा को पता चला, तो ब्रह्मा बाबा को दुख दिया या सुख दिया?
दुख दिया,
दुख दिया ना। तो ऐसी दुख देने वाली आत्मा जिसने हार्ट फेल कर दिया ब्रह्मा बाबा का, उसको दुख मिलना चाहिए कि या नहीं मिलना चाहिए? संगम युग में, संगम युग में यहां दुख मिलता है, उसकी यादगार है कि क्राइस्ट का जो आधार मूर्त आत्मा है जो यहां ऐसे कर्म करता है इतना दुख दे दाई बन जाता है, तो वहां क्राइस्ट की आत्मा को भी क्रॉस पर चढ़ाया जाता है।
बाबा महाभारत में भीम का पार्ट किसका है? इसमें हजारों हाथी और बल दिखाया गया।
हजार हाथियों का बल, हजारों हाथियों का बल, हाथी किसे कहा जाता है? महारथी, जो ज्ञान में चलते चलते महारथी बने का पुरुषार्थ करते हैं वो क्या हो गए? वो हाथी जैसा पुरुषार्थ करने वाले हो गए। तो अभी इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में हाथी जैसा पुरुषार्थ करने वाले भी हैं या नहीं है, जिनकी यादगार दिलवाड़ा मंदिर में हाथी दिखाई गई है ना? वो हजारों की हजार तादाद में एक आत्मा के सहयोगी बनते हैं या नहीं बनते हैं? है? सहयोगी बनते हैं माने वो भुजाएं होगी, तो हजार हाथियों का बल हो गया। अगर सहयोगी बने, किसके सहयोगी बने? भीम के सहयोगी बने। भीम कर्मा ब्रकोदर है, ब्रक माने भेड़िए की तरह जिसका पेट है, बुद्ध रूपी पेट, बहुत बुद्धि चलती है, बुद्धि में बहुत तीखा है और खाता भी बहुत है। क्या जो भेड़िया है वो शेर की तरह थोड़ा बहुत मांस खाता है कि खाता ही चला जाता है जब तक मरे हुए प्राणी का मांस खत्म न हो जाए? वो खाता ही चला जाता है, खाता ही चला जाता है। कौन से भोजन की बात है? स्थूल भोजन की बात है, स्थूल भोग भोगने की बात है या सूक्ष्म भोग भोगने की बात है? ये सूक्ष्म भोग है, जिसके लिए मुरली में बोला है जिन्ना, तुम जिन्न हो, क्या जिन्न को क्या काम दिया, ऊपर चढ़ो, निराकारी स्टेज में ऊपर चढ़ जाओ, फिर नीचे आओ देह अभिमान में, बार बार नीचे आओ, बार बार ऊपर चढ़ो। तो ये ताकतवर आत्मा करेगी या कमजोर आत्मा करेगी? ताकतवर आत्मा का पार्ट है। अकेले भीम में ही ऐसी ताकत थी कि 100 कौरवों को मारा, 100 कीचकों का वध किया और ढेर सारे राक्षसों का वध किया, हिडंब जैसे राक्षसों का, कि दूसरे पांडव ने किया, भीम की बात है।
लेकिन बाबा जब तालाब के लोग जाते हैं चारों भाई है? एक एक करके जल लेने जाते हैं तो भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों ढेर हो जाते हैं तो बाद में युधिष्ठिर जाते हैं तो उनके 10 प्रश्नों का उत्तर वो देते हैं
है?
तब वो कहते हैं एक भाई को जीवित कर लो, एक भाई को अपने जीवित कर लो, तो वो तो भीम नकुल सहदेव अर्जुन सब जो है उनको जल लेना चाहते, जबरदस्ती मतलब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते, तो वो बताइए फिर वो तो चारों मूर्छित हो गए थे।
ज्ञान जो है, ज्ञान लेने की जो बात है, वो ही कोई विद्यालय होता है कि नहीं होता है, है? और विद्यालय में जब जाते हैं तो वहां के नीति नियमों को पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है? विद्यालय एक सरोवर हो गया क्या, और यक्ष धर्मराज हो गया, हुआ ना? तो दिखाया गया है कि जिसने नीति नियम का पालन किया तो वो तो पास हो गया, और जिसने नीति नियमों का पालन नहीं किया, एकड़ी दिखाई,
हम तो लेके जाएंगे,
हवा कौन रोकेगा, हवा पानी से कोई रोक पाएगा, हमारा भी ईश्वरी ज्ञान के ऊपर पूरा अधिकार, तो नीति नियम का पालन नहीं किया। अरे विधि से सिद्धि होगी या बिना विधि के चलेंगे तो सिद्धि हो जाएगी। जैसे ज्ञान में आते हैं तो पहला नियम है कि प्रश्न उत्तर ही सामने रखी जाती है, बड़ो उसको, परिचय दो अपना, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारा धंधा क्या है, तुम कौन से ज्ञान में चलते थे, किस संस्था में जाते थे, तुम्हारा धर्म ग्रंथ कौन सा है, ये परिचय पत्र भरवाया जाता है। तो ये सब लफड़ेबाजी हमको क्यों सुनाते, तो अपनी बात करो ना ज्ञान की, ये सब हम नहीं भरेंगे। अच्छा उनसे कहो साइन ही कर दो, अपना एड्रेस ही लिखो, तो हम नहीं लिखेंगे। तो युद्ध स्थिर जैसी आत्माएं होंगी, विधि विधान पूर्वक चलने वाली आत्माएं हैं, धर्मानुकूल चलने वाली या एकड़ी दिखाने वाली हुई, धर्मानुकूल चलने वाली
है। वो उत्तर वो देते हैं
बाबा, जो केवट और राम की बात लाई है, राम के पैर हुए केवट और राम की आत्मा,
अभी तो बताया कि नवैया कोई काठ की नहीं होती है, स्थूल नवैया नहीं है, कोई कन्या या माता जैसी नवैया है कठबुद्धि, जो बाप को पूरा पहचान नहीं पाती है, उसके ऊपर पांव रखने से पहले केवट ने क्या किया, उनसे कहा अपने पैर धुलवा लो, है? नहीं तो आपकी चरण रस से हमारी नैया भी चली जाएगी।
आज के मुरली बोला कि जज बैरिस्टर के फालतू कवाई होती रहती है, इसी तरह
लड़ाई झगड़े कहाँ होते हैं, नई दुनिया में होते हैं पुरानी दुनिया में? तो अगर नई दुनिया आ जाए तो जज बैरिस्टर रहेंगे तो फालतू कवाई है। अगर एक राजा, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होगी दुनिया में तो ये कमाई होगी
नहीं होगी।
जो ज्ञान की तिक तिक बहुत करते
चलते नहीं। जो गलत धंधे करने वाले हैं उनको ही जिताए देते, उनका ही पक्ष दे देते। काले कोट वाले बैरिस्टर हुए ना, उनका तो धंधा है कि जो पैसा देगा हम उसकी तरफ से लड़ेंगे, चाहे उनकी लड़ाई झूठी हो और चाहे सच्ची हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं।
बाबा पार्वती के गणेश जी लड़के हैं पुत्र, और शंकर जी के श्री शंकर भोलेनाथ के कार्तिक हैं। कार्तिक
क्या?
कार्तिक
ने कहा पेट से पैदा किया था कार्तिक को,
लेकिन बोला तो जाता है ना बाबा।
हाँ
कार्तिक और ये गणेश जी
ज्ञान के बच्चे हैं ना।
हाँ ज्ञान के बच्चे हैं, लेकिन काम तो गणेश जी ने अच्छा किया
है।
जो काम जो है गणेश जी ने अच्छा किया है।
हाँ।
उनको सृष्टि का चक्र लगाना था।
हाँ।
तो उन्होंने माता पिता को ही परिक्रमा कर करके।
मातेला अच्छा होता है या पितेला अच्छा होता है? किसको अच्छा माना जाता है? मातेले को अच्छा माना जाता है। वो प्रवृत्ति मार्ग का हो गया। गणेश जी प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या कार्तिकेय ही प्रवृत्ति मार्ग वाला था? सन्यासी कौन था और प्रवृत्ति मार्ग वाला कौन था? कार्तिकेय सन्यासी के सन्यासी रहे,
लेकिन भोलेनाथ के थे ना।
हाँ भोलेनाथ के तो थे, लेकिन एक से पैदा हुए या दो से पैदा हुए? पैदाइश प्रवृत्ति की है या निवृत्ति की है?
लेकिन वो बताया ना, छह धर्मों से, तो छह धर्मों से पैदा हुए।
छह धर्मों से नहीं पैदा हुए, छह कृतिकाओं द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। पैदा तो एक बाघ से ही हुए। और
आत्म चिष्टे जो है बनने से फिर धारणा आती है, वो पवित्रता की पवित्रता के आधार से आत्म चिष्ट बनती है।
दोनों बातें एक है, जिनमें जन्म जन्मांतर की आत्मिक स्थिति होगी, देहभान नहीं होगा, उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी, या जिनमें आत्मिक स्थिति नहीं होगी देहभान ज्यादा होगा उनमें प्योरिटी की धारणा ज्यादा होगी। ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ना वो तो है, लेकिन नारायण और लक्ष्मी भी कौन बनेंगे? जो पवित्रता को धारण करेंगे। आत्मा जो है अगर पवित्र ना, धारणा तो आज के साधु सन्यासियों में ज्यादा है, या बाप की जो सेना है राम की सेना उसमें धारणा ज्यादा है?
साधु सन्यासी
है, साधु सन्यासी में ज्यादा धारणा दिखाई दे रही है। और ये बंदर है इनमें धारणा है? है? धारणाओं में भी मुख्य धारणा कौन सी है? है प्योरिटी धारणा मुख्य है,
प्योरिटी के आधार से आत्मा मुक्ति बनेगी।
हाँ जी प्योरिटी, आत्मा जितनी पवित्र बनेगी उतनी प्योरिटी आएगी। आत्मा में जितनी इम्प्योरिटी होगी माने कचरा होगा, कचरा कौन सा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच विकारों की खाद है। ये खाद 63 जन्मों में पड़ी है। ये खाद जितनी जास्ती आत्मा में पड़ी हुई है उतनी अपवित्र है। हमारे ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमें क्या करना है? याद तो करना है, लेकिन याद किस लिए करना है? पवित्र बनने के लिए। तो पवित्रता हमारा मुख्य लक्ष्य है।
बाबा बेहद में भी तो ज्ञान अगर ज्यादा लेता है तो वो भी तो लोभी हुआ ना।
ज्ञान ज्यादा लेता है धारणा नहीं करता, तो रावण है या ज्ञानी है? रावण हो गया है।
अंत में ये ज्ञान भी छूट जाएंगे,
ठीक है,
धारणा ही रह जाएगी और याद ही रह जाएंगे,
ठीक है।
तो ज्ञान देने से तो बढ़िया धारणा करना और याद करना ही है।
बिना ज्ञान के धारणा और याद हो जाएगी? किसको याद करेंगे?
ज्ञान के आधार पर याद करेंगे।
ज्ञान माने जानकारी, पहले आत्मा की जानकारी, 63 जन्मों की जानकारी हो जाए, 21 जन्मों की जानकारी हो जाए, 84 जन्मों का पार्ट आत्मा को मिले, नहीं तो आत्मा बेवकूफ पाटदारी।
सेले पढ़ने के लिए तो बल्लियों का आधार लेना पड़ेगा ना
है?
सेले जब पढ़ेगी तो बल्लियों का आधार लेना पड़ेगा।
हाँ जी
बाबा, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना करते आज मुरली में बोला है, और किसी मुरली में बताया क्या बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तीन धर्म की स्थापना करते?
ब्रह्मा द्वारा देवता बनता है कोई? कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा भी तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। और चलो।